اجتباكم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اب ہمارا انتخاب اللہ پاک کی طرف سے یہ ہوا، یہ دنیا میں جا کر دعوت و دین کی محنت کا کام کرے گا. یہ جتنا نظام دنیا میں چلا ہے، لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے اللہ پاک نے چھانٹ کر کے ہم کو ایمان والا بنایا، پھر ایمان والوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے چھانٹ کر کے دنیا میں دعوت کی محنت کے ذمہ دار. کوئی مسجد کا، کوئی حلقے کا، کوئی شہر کا، کوئی ضلع کا، کوئی صوبے کا، لیکن یہ پورا انتخاب اللہ پاک کی طرف سے اللہ ہی نے کیا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ دنیا میں اچھی باتوں کا حکم کریں گے، بری باتوں سے روکیں گے. اللہ پاک نے جس کو جو دیا ہے، جانی، مالی، تندرستی، جس لائن کی بھی صلاحیتیں دی ہے، ان تمام صلاحیتیں اللہ پاک نے اس کے لیے دی ہے تاکہ یہ آدمی دنیا میں جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاوے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طوبیٰ لعبدٍ، بڑا مبارک بادی کے قابل وہ آدمی ہے کہ جس کو اللہ پاک دنیا میں خیر کی چابی بناوے اور شر کا تالا بناوے، کہ جس کی برکت سے دنیا میں خیر وجود میں آوے، جس کی برکت سے دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو، اور جس کی برکت سے لوگ اللہ کو پہچانے. آج ہم نے سب کچھ کو پہچانا ہے، لیکن بولو کس کو نہیں پہچانا؟ ہمارے مالک اور خالق کو ہم نے نہیں پہچانا. حالانکہ سب کچھ تو اللہ نے دیا، جان اللہ نے دی، مال اللہ نے دی، تندرستی اللہ نے، بیوی بچی اللہ کی طرف سے، اور دنیا میں جو کچھ استعمال کرتے ہیں یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور اللہ پاک کی طرف سے حکم یہ ہے، اللہ پاک نے ہم تمام کو جو پیدا فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت اور اپنی معرفت کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے. ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے خالق اور مالک کو پہچانیں، کہ ہمارا مالک کتنی بڑی طاقت والا ہے. ساری دنیا میں اس وقت کے اندر جتنے انسان ہیں، جتنے حیوان، جتنے جانور، جتنی چونٹیاں، جتنے اور زہریلے جانور، ان تمام کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. اور ان تمام کی تمام ضرورتیں بولو کون پوری کرتا ہے؟ اللہ پاک پوری کرتا ہے. اس لیے ہر نبی کی پہلی آواز یہ ہوتی تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اکیلے اللہ ہی کو، ایک اکیلے اللہ ہی کو دل میں بسا لو، اللہ پاک دنیا اور آخرت کی زندگی کو بنائے گا. اندازہ لگاؤ 360 معبود تھے بیت اللہ میں، کتنے تھے بولو؟ ایک آدمی اپنا لباس کو بدل دے آسان ہے، اپنا گھر بدل دے آسان ہے، اپنا کاروبار تبدیل کر دے آسان ہے، لیکن ایک آدمی مذہب کو بدل دے، ارے بولو، بہت مشکل. لیکن 360 معبود بیت اللہ میں، اور کفار مکہ کا یقین یہ تھا، یہ بارش کے برسانے کا، یہ کھانا کھلانے کا، یہ اولاد کے دینے کا، یہ تندرستی کا، پتہ نہیں الگ الگ معبود بنا کر. اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور ان کو ایک اکیلے اللہ ہی کی طرف بلایا تو کیا کہتے تھے؟ اللہ نے اس کو قرآن پاک میں نقل کیا، اجعل الآلہۃ الہًا واحدہ، کیا ان تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنا؟ تو بڑی عجیب بات. لیکن بولو، یہ حق محنت کے نتیجے پر، 23 سالہ محنت کے نتیجے پر اللہ پاک نے وہ دن دکھلائے کہ اللہ پاک نے اتنے بڑے توحید اور اتنا بڑا اللہ کی وحدانیت کا یقین ان کے دلوں کے اندر اتار دیا. اب اللہ کے غیر کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. دوستو بزرگو، اللہ پاک نے ہم تمام کو ایک چھوٹی سی زندگی دی ہے، 60-70 سالہ زندگی، اور اللہ پاک نے صلاحیتیں دی ہے، اللہ پاک نے مال دیا ہے، اللہ پاک نے جان و مال کی، اور پتہ نہیں کتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے. ان تمام نعمتوں کے متعلق اللہ پاک قیامت کے میدان کے اندر پوچھیں گے. حدیث کے اندر آتا ہے، کلکم راعین، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور اپنی ذمہ داری، اپنی ماتحتوں کے متعلق اللہ پاک پوچھیں گے کہ تم نے اپنے ماتحتوں کو دین کتنا دیا. اس لیے آتا ہے کہ ایک عورت एक शोहर और एक मर्द चार औरतों के, चार औरतों का जिम्मेदार बनता है। भाई बीवी भी है, माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, इन चारों की जिम्मेदारी उसके कंधे पर है। और कयामत के मैदान के अंदर अल्लाह पाक की तरफ से पूछेंगे कि तुमने इनको कितना दीन दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम वअहलिकुम नारा। पहली जिम्मेदारी तो हर आदमी की अपनी है कि हम आखिरत की आग से अल्लाह पाक हमको नजात देवे और अपने बीवी बच्चों को आग से बचावे, जहन्नम की आग से बचावे, ये अल्लाह का हुक्म। इस दावत की मुबारक मेहनत के जरिए से इसी बात की फिक्र की जा रही है कि आदमी ऐसी अपनी ज़िंदगी को गुजारे, उसकी ज़िंदगी में नमाज, उसकी ज़िंदगी में ईमान, उसकी ज़िंदगी में मामला, उसकी ज़िंदगी के माशरत, उसकी ज़िंदगी के अखलाक ऐसे पाकिज़ा बन जावे। और हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक की तरफ से फरमाया, फ़ैन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। जैसे ये लोग ईमान में दाखिल हुए सहाबाए किराम, अगर तुम लोग भी ईमान को कबूल कर लो तो अल्लाह पाक तुमको भी हिदायत दे देगा। इसलिए पहली बुनियादी चीज़ ये है कि भाई हमारे दिलों का यकीन सही हो जाए। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ईमान के नंबर के जरिए से इस बात को चाहा जाता है कि गलत यकीन निकाल करके सही यकीन पैदा कर। हमारा यकीन ये है कि चीज़ों से होता है, असबाब से होता है, माल से होता है, दवाओं से शिफा मिलती है, कुर्सी से इज्जतें मिलती है, हालांकि ऐसी बात नहीं। वलिल्लाहि अल-इज्जतु वलि रसूलिहि वलिल मोमिनीन। इज्जतें अल्लाह के ख़जाने से आएगी और नबियों के वास्ते से अल्लाह पाक ईमान वालों को अता फरमाएंगे। इज्जतें माल की बुनियाद पर नहीं। अरे दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा मालदार अल्लाह पाक ने कारून को बनाया। किसको बनाया बोलो? अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर उसका तस्करा किया कि इतना बड़ा सरमाएदार था कि इसकी खजाने की चाबियां बड़े बड़े पहलवान उठाकर चलते थे। इतना बड़ा माल वाला, लेकिन बोलो कोई अपने बच्चे को कारून नाम रखना पसंद करता है? अरे बोलो किसी के बच्चे का नाम कारून है? हालांकि मालदार है। क्या बात हो गई कि इज्जतें नहीं। इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तुम में से ज्यादा इकराम वाला वो आदमी होगा जिसकी जिंदगी में दीन होगा, जिसकी जिंदगी में तकवा होगा, जिसकी जिंदगी में अल्लाह के अहकामात होंगे। आप देखो, एक आदमी हमारे समाज के अंदर बहुत अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन चिल्ला चार महीने लगा कर आ गया, या नमाज पढ़ने का आदि बन गया, या सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में बहुत सी सुन्नत इख्तियार कर ली, तो हर छोटा बड़ा उसको क्या कहेगा? भाई साहब मेरे लिए दुआ करना। अरे भाई क्या बात हो गई? बोले उसके चेहरे पर सुन्नत आ गई, ये नमाज का पाबंद बन गया, ये अल्लाह के दीन की मेहनत करने वाला बन गया। तो अल्लाह पाक ने उसकी ज़िंदगी को ऐसा बदला कि सारी दुनिया उसकी तरफ मुतवज्जो होकर कहने लगी, भाई साहब दुआ करना। सहाबा किराम की जिंदगियों के अंदर अल्लाह पाक ने इतना दीन अता फरमाया, इतना दीन अता फरमाया कि सारी दुनिया के इंसानों के बीच में जाकर यूं कहते थे, कुनू मिसलना, हमारे जैसे हो जाओ। क्या मतलब? दीन, ईमान, आखिरत, मरने के बाद की जिंदगी की फिक्रें, और ऐसी नुमाया जिंदगी अल्लाह पाक ने बनाई थी कि सारी दुनिया के इंसानों के बीच में जाकर कहते थे कि हमारे जैसे हो जाओ। मैं और आप अपनी बीवी को नहीं कह सकते, अरे बोलो कह सकते? मेरी जैसी हो जा। अपने बच्चे को कह सकते? हमारे मुलाजिम को कह सकते? एक उमूमी फिजा बनी है ये जानो माल की सलाहियत के जरिए से। दोस्तों बुजुर्गों, एक उमूमी माहौल को बनाने की जरूरत है, और जब माहौल बन जाता है ना, तो मालदार हो, गरीब हो, जंगल का रहने वाला हो, देहात का रहने वाला हो, अपने कारोबार में हो, मस्जिद में हो, घर में हो, अल्लाह पाक 100% माहौल को जिंदा कर दे। और हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत के नतीजे पर कि जहाँ 360 माबूदों की इबादत हो रही थी और वहाँ एक अकेले अल्लाह से दावत देने की जो दावत चली, तो चली इतनी कि अल्लाह पाक ने जंगल में बकरियों को चराने वालों को अल्लाह पाक ने तकवा और तहारत अता फरमाया। हजरत शेख ने लिखा है, अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला ने एक मरतबा जंगल के अंदर गए, एक बकरी का चराने वाला आया, आप खाना खा रहे थे, आपके साथ कुछ साथी थे। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला ने कहने लगे, आप भी हमारे साथ नौश फरमा लो। अरे होता है ना, जब आदमी खाने के लिए बैठा है और कोई गुजरा या कोई आया तो आदमी कहेगा भाई आप भी हमारे साथ चलो। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला ने जब इनको बुलाकर कि भाई हमारे साथ खाना नौश कर लो और हमारे साथ खाने में शरीक हो जाओ, तो क्या कहने लगे, मैं अय्याम खालिया को वसूल कर रहा हूं। क्या मतलब? कि आदमी दुनिया में रोजेदार होगा, अल्लाह के अहकाम पर चलेगा और प्यारे नबी की सुन्नत के तरीके के मुताबिक चलेगा, अल्लाह पाक उसको जन्नत में जाकर यूं कहेंगे, कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलबतुम फिल अय्याम खालिया, खाओ पियो दुनिया की उस जिंदगी के बदले जो तुमने अल्लाह के अहकाम के साथ पूरी कर दी है। और यूं कहने लगा वो चरवाहा कि मैं तो अय्याम खालिया को वसूल कर रहा। अच्छा भाई शाम को हमारे साथ इफ्तारी कर लेना, ठीक है देख लेते। अच्छा ये बकरी दे दे। बोले बकरी मेरी नहीं है। बकरी का मालिक कौन है बोलो? तो उसका मालिक अलग है। अरे बोले दे दे और उसको कह देना कि भाई भेड़िया खा गया, लेकिन मेहनत हुई, एक माहौल बना है, एक जानो माल की कुर्बानी खपी है, तो जंगल में रहने वाला उसको भी अल्लाह का डर और आखिरत का इस्तेजार है। आज दोस्तों बुजुर्गों मस्जिद में होकर भी हमको अल्लाह याद नहीं आते। अरे बोलो याद आते? वो तो वहां है जंगल में है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला नु कहने लगे कि भाई साहब अपने मालिक को कह देना भेड़िया खा गया। लेकिन हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है और वो जुमला उस वो चरवाहा कहने लगा, अय्यनल्लाह अय्यनल्लाह, अल्लाह कहाँ चले जाएंगे, अगर मैंने आज झूठ बोल लिया और अगर मैंने आज किसी को धोखा दे दिया और अगर मैंने आज अपने आप को इस लालच के अंदर अपने आप को फंसा दिया और मैं अगर दुनिया में झूठ बोलकर अगर नजात पा भी जाऊंगा, लेकिन अल्लाह पाक तो हर चीज को देखने वाला है। किरामन कातिबीन यालमून मा तफालून, अल्लाह पाक ने हमारे कंधे पर दोनों फरिश्ते बिठाकर क्या कहा कि ये दोनों के दोनों फरिश्ते इंसानों की एक एक चीज को नोट करते हैं। इसलिए भाई दोस्तों बुजुर्गों एक मौका अल्लाह पाक की तरफ से हमको अल्लाह ने दिया है अपनी आखिरत के बनाने के लिए। बेहतरीन मौका दुनिया मज़रअतुल लिल आखिरा, दुनिया की जिंदगी आखिरत के लिए खेती है। इस दुनिया में जो बोएंगे वही काटेंगे। अगर नमाज को बोएंगे तो नमाज काटेंगे, रोजे को बोएंगे तो रोजे का सवाब मिलेगा, सदके और खैरात को, आखिरत की फिक्रों को, उम्मत के दर्द गम को, अल्लाह के रास्ते की मेहनत को, जो चीजें अभी इस वक्त के अंदर अल्लाह पाक की तरफ से मौका मिला है, अगर आदमी मेहनत करके अपने आप को बनाएगा। यूं आता है कि आदमी जब अपने आप को बनाता है ऐसा बनता चला जाता है कि फरिश्तों से आगे उसका दर्जा हो गया। और अगर इंसान ने अपने ऊपर मेहनत नहीं की, अरे बोलो दुनिया की चीजों पर तो मेहनत की, हवा में उड़ाते कर दिया, लेकिन अपनी जात पर मेहनत नहीं हुई, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया ऐसे इंसान कल अनआम बल हुम अदल, ऐसे इंसान इंसान नहीं बल्कि चौपाए हैं और उससे भी ज्यादा गिरे हुए। ये मेहनत अपने आप को बनाने की है। ये मेहनत क्या है बोलो? अपने आप को। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बड़े बड़े जवानी के अंदर और बड़े राहतों के साथ जिंदगी गुजारने वाले, लेकिन जिस दिन अल्लाह पाक की तरफ से उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को खलीफा बनाया गया, उस दिन से कहने लगे कि 2.5 साल जिंदगी थी लेकिन कभी गुस्ल जनाबत की नौबत नहीं आई, बल्कि पूरी पूरी रात इबादत के अंदर अपने आप को लगाते थे। अल्लाह ने जानो माल दी थी, 3 बर्रे आजम के खलीफा थे। दुनिया में 7 बर्रे आजम है तो 3 बर्रे आजम तक अल्लाह पाक ने इनकी खिलाफत चलाई और इनके जमाने के अंदर इतनी बड़ी हुकूमत के मालिक बना दिए। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों जिंदगी अल्लाह के खौफ के साथ गुजरती थी और अपने आप को ऐसा बनाया था और अल्लाह पाक की तरफ से ऐसा दुनिया के अंदर अदल और इंसाफ को कायम फरमाया था कि दोस्तों बुजुर्गों उसकी मिसाल कोई पेश नहीं करता। एक दिन बीवी कहने लगी, ईद का वक्त है और महल्ले के बच्चे सबके नए कपड़े सिए जा रहे, तो बच्चों ने आकर यूं कहा, अम्मी इस साल तो हम भी चाहते हैं कि ईद में नए कपड़े पहने, इसका माना हर साल नहीं पहनते थे। इतना बड़ा आदमी, इतने बड़े बाप का बेटा, लेकिन दोस्तों बुजुर्गों ईद इसलिए कि आखिरत को याद करके चल ले। अब क्या हुआ? तो बीवी ने कहा ठीक है, माँ ने कहा ठीक है, अब्बा को आने दो, बात करूंगी। उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह आए तो अहलिया ने, माँ ने कहा, बच्चों की माँ ने और उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की बीवी ने कहा कि भाई इस साल बच्चों को नए कपड़े सीने की तमन्ना लेकर आए हैं, अगर कुछ इंतजाम हो जावे तो हम नए कपड़े सिलाकर बच्चों की ईद नए कपड़े में कराएंगे। कौन? उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह, जो तीन बर्रे आजम का मालिक है, जानो माल को गलत इस्तेमाल नहीं किया। तो उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो इतनी तनख्वाह और वजीफा आता है कि जो हम एक महीना घर का गुजारा कर ले। तो बहुत सोच समझ कर बीवी ने कहा एक राय दूं। बोले हाँ, तो आइंदा महीना, ये दिसंबर चलता है ना, जनवरी का एडवांस तनख्वाह हम ले ले वे। जो बैतुल माल से मिलता है एक महीना एडवांस ले ले वे। उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ठीक। अब ये देखो मशवरे हो रहे हैं। उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह खजांची के पास गए और जाकर यूं कहा कि भाई मेरे बच्चों को ईद में नए कपड़े सीने हैं, तो तुम एडवांस तनख्वाह दे दो आइंदा महीने, मैं तुम्हारा आइंदा महीने की तनख्वाह अभी से दे दो, आइंदा महीने नहीं लूंगा। लेकिन अल्लाह पाक ने एक माहौल बनाया था, एक उमूमी, मर्द हो, औरतें हो, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रात के वक्त में गश कर रहे, अमीरुल मोमिनीन है, अल्लाह पाक ने जिम्मेदार बनाया है, तो रात के वक्त में गश कर रहे कि देखे अपनी रायत का क्या हाल है। हम तो अपनी बीवी बच्चों की निगरानी नहीं कर सकते, अरे बोलो कर सकते? और हम अल्लाह की बात को नहीं मानेंगे तो बोलो बीवी बच्चे हमारी बात को मानेंगे? अरे बोलो। इसलिए कि हम अल्लाह की नहीं मानेंगे तो मखलूक हमारी बात कैसे मानेंगे? और सहाबाए किराम की जिंदगी के अंदर अल्लाह की 100% इताअत थी, तो अल्लाह पाक ने इनकी आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचाया। अरे बोलो पहुंचाया कि नहीं? हजरत उकबा इब्ने नाफे जंगल में पहुंचे, अल्लाह के दीन की मेहनत करते 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 आगे बढ़े और जंगल बयाबान के अंदर पहुंचे तो देखा कि वहां एक कौम है, बहुत बड़ी कौम है। अब इनको लाकर दावत की मेहनत है, कलमा सिखलाना है, दीन सिखलाना है, लेकिन एक बहुत बड़ा जंगल है। तो चूंकि अल्लाह की इताअत थी, अरे बोलो किसकी इताअत थी? अल्लाह की बात को मानते थे तो मखलूक इनकी बात मानती है, और आज हम अल्लाह की बात नहीं मानते तो हमारा बच्चा बोलो हमारी बात को मानता है? कल एक आदमी आकर कहने लगा मौलाना मेरे बेटे को समझाओ ने, रात को 2-2.5 बजे घर पे आ जाता है और मैं और मेरी बीवी रात के 2:30 बजे तक उसके इंतजार में रहते हैं। हमने समझाया, उसके उस्ताद ने समझाया, उसके टीचर ने समझाया, उसके दोस्तों ने समझाया, किसी की बात मानता नहीं है। मौलाना तुम्हारा उसके साथ ताल्लुक है तो जरा 2 बातें करो ताकि हमारा ये रात को जगने का वबाल खत्म हो जाए। क्या बात हो गई? क्या हम अल्लाह की नहीं मानते तो हमारी अपनी औलाद और बीवी भी हमारी बात करने। और वो सहाबाई किराम अल्लाह की इताअत में अपनी जिंदगी को गुजारते थे तो अल्लाह पाक की तरफ से निजाम ये चला कि भाई उस जंगल के अंदर उकबा इब्ने नाफे ने देखा कि पूरा जंगल है और जहरीले जानवर है, तो क्या ऐलान किया? ए जंगल के जानवरों, हम हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से हैं और हम यहाँ कयाम करना चाहते हैं, हमारा ऐलान है कि तुम जंगल को खाली कर दो। हालांकि जानवर है, बोलो कोई इनकी जुबान को, मैं और आप अभी सांप को यूं कहेंगे कि तू चला जा, चला जाएगा। लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से ऐसी अल्लाह उसके रसूल की इताअत थी कि सारी मखलूक इनकी बात को मानती थी। अब इनका ऐलान हुआ, कहते हैं कि 3 दिन का मौका दिया, और तीन दिन के अंदर शेर अपने बच्चों को लेकर, भेड़िया अपने बच्चे को लेकर, सांप अपने बच्चों को, अब पूरा का पूरा जंगल खाली हो गया और उस कौम को बसाया और उस कौम को पूरी दीन और दावत की मेहनत को सिखलाया और इनकी ज़िंदगी के अंदर दीन और इताअत को भरकर फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहाँ तक के समंदर आ गया। तो कहने लगे, ऐ अल्लाह, अगर इस समंदर के उस पार भी अगर कोई अल्लाह की मखलूक है और वहाँ दावत का तकाजा है, हम जाने के लिए तैयार। लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने के अंदर मिस्र में दरियाए नील के चलाने के लिए इनके यह एक रिवाज था कि फला महीने की 12 तारीख को अगर किसी कुंवारी बच्ची जो अपने बाप की इकलौती है उसको खरीद करके, उसको राजी करके, सोना चांदी रुपया देकर उस लड़की को उस समंदर के नाम पर भेंट चढ़ावे, तब इनका अकीदा ये होता था कि भाई दरियाए नील चालू रहेगा। अब वो गवर्नर पहुंचे अम्र इब्ने आस, उन्होंने कहा कि भाई ये क्या बात हो रही है, किसकी तैयारी हो रही है? तो इन्होंने कहा, हमारे यहाँ दरियाए नील के चलाने के लिए एक रिवाज है कि फला महीने की 12 तारीख को इकलौती बेटी को लेकर हम दरिया के नाम पर भेंट चढ़ाएंगे तो दरिया का पानी चलेगा। उन्होंने कहा कि नहीं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। अल इस्लामु यहदिमु मा कान कबल, इस्लाम मा कबल की तमाम बुरी रस्मों को खत्म कर दिया है, अब क्या करेंगे? तो लोगों ने हिजरतें शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि ठहरो, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मदीना मुनव्वरा में खत लिखा, मिस्र से खत लिखा, और क्या लिखा कि भाई यहाँ एक रिवाज है और इस तरीके से ये लोग इकलौती बेटी को लेकर और दरियाए नील के नाम पर भेंट चढ़ाते हैं और इनका अकीदा ये है कि उसके जरिए से पानी बहता है। अब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दरियाए नील के नाम पर खत लिखा, अरे बोलो, किसी रिश्तेदार के नाम पर नहीं। अगर हम किसी रिश्तेदार को भी लिखेंगे तो रिश्तेदार भी हमारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन किसके नाम पर? दरियाए नील के नाम पर। और क्या लिखा? उमर इब्ने खत्ताब की तरफ से ये पर्चा दरियाए नील के नाम पर, और यूं कहा कि अगर तुम अपनी तरफ से बहती है, दरियाए नील को कहा, अगर तू अपनी तरफ से बहती है, तू अपना पानी जारी करने के अंदर अपनी तरफ से बहती है, मेरे को तेरी कोई ज़रूरत नहीं, और अगर तेरा बहाव अल्लाह की तरफ से होता है, हम उस अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह पाक तेरे पानी को बहा दे। इस पर्चे को तैयार करके मिस्र भेजा और गवर्नर को कहा उसको दरियाए नील के अंदर डाल दो, और दरियाए नील के अंदर जैसे ही डाला, कहते हैं उस दिन से लेकर आज 1400 साल हो गए, अल्लाह पाक ने दरियाए नील के पानी को जारी रखा। मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू, जो आदमी अल्लाह का बन जाएगा, बोलो अल्लाह पाक भी। लेकिन हम तमन्ना क्या करते हैं कि अल्लाह हमारी बात को सुने, लेकिन हम अल्लाह की बात को न सुने। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अगर कोई आदमी अपनी बीवी को यूं कह दे कि तू मेरी माँ की तरह है, तो माँ हराम है, ऐसे बीवी भी क्या हो जाती है? बोलो तलाक, ये तलाक हो गई। जमाने जाहिलियत से ये बात चली आ रही। अगर किसी ने यूं कह दिया कि तू मेरी माँ की पुश्त की तरह है, जैसे मेरी माँ हराम है ऐसे तू भी हराम, ये इनके तलाक देने का रिवाज था। अब हजरत खौला, उसके शोहर ने यूं कह दिया कि तू मेरी माँ की तरह है, अब ये औरत आकर हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और आकर कहने लगी, अल्लाह के नबी, ये वाकया हो गया कि मेरे शोहर ने यूं कहा कि तू मेरी माँ की तरह है, अब उसने मेरे को तलाक दे दी, अब मेरे लिए क्या मसला है? अब चूंकि अल्लाह पाक की तरफ से कोई हुक्म तो आया नहीं, और जो चीजें चली आ रही है उसी पर हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया कि भाई तू मुतल्लका हो गई। अल्लाह के नबी, कोई नजरे सानी? बोले क्या कर सकते, एक मर्तबा दो मर्तबा कहा, लेकिन उसका अल्लाह के साथ ताल्लुक था। किसके साथ ताल्लुक था? बोलो मन कान लिल्लाह ही कान अल्लाह लहू, जो आदमी अल्लाह का बन जाता है फिर अल्लाह पाक भी बन जाते, फिर अल्लाह उसके मसले को हल कर देते। राबिया बसरिया इबादत करके आई, पूरी रात इबादत की, अब शोहर के लिए खाना पकाने के लिए किचन में गई तो देखा कि प्याज नहीं है, तो इसको मार्केट जाने की जरूरत नहीं, इसको दो रकात पढ़ के अल्लाह से मांग, इतना अल्लाह के साथ ताल्लुक हो गया कि बाजे आदमी होते ना, अरे भाई मेरा नाम ले लेना, अरे बोलो कहते हैं कि नहीं, बाजे आदमी कहते हैं कि भाई जरा जाकर फोन करा देना, अब इनका ताल्लुक अल्लाह के साथ था। तो नमाज अभी तो इबादत करके आई है और किचन में गई और प्याज नहीं है, तो उसने अल्लाह की तरफ देखा, किसकी तरफ देखा बोलो, आसमान की तरफ। अभी उसकी जुबान से कुछ नहीं निकला, लेकिन बाजे आदमी भाई मेरा नाम ले देना या मेरे को फोन करा देना, या आदमी इशारा करता है जरा काम कर दे। अब ऐसा अल्लाह के साथ ताल्लुक है कि भाई अल्लाह की तरफ, सिर्फ आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का निजाम हरकत में आ गया। एक जगह कहीं से कोई परिंदा उड़ा और उसने प्याज को अपनी चोंच में दबाया, और जहां राबिया बसरिया बैठी है ऊपर से उसने प्याज को डाल दिया और अल्लाह पाक ने उसका काम पूरा कर दिया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की इबादत में थी, अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की फरमा बरदारी में, और अल्लाह के साथ ऐसा ताल्लुक कायम फरमा दिया कि फिर अल्लाह पाक का निज़ाम ये है कि जो आदमी अल्लाह का बन जाता है, बोलो अल्लाह पाक भी उसके बन जाता। हमने दुनिया की तमाम चीजों को पहचाना, लेकिन बोलो किसको नहीं पहचाना, अरे बोलो अल्लाह। तो कितनी बड़ी ताकत वाले, सुनाओ, नबाता इब्ने यजीद ताबिई है, अल्लाह के दीन के तकाजे के लिए चले, चलते चलते इनकी सवारी का इंतकाल हो गया। और दुनिया में कानून है कि जब कोई भी, चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, बोलो मर जाने के बाद दोबारा जिंदा होगा, अरे भाई कहीं सुना, बाप दादा परदादा सकरदादा जितने भी इंतकाल हो गए, अरे बोलो कोई जिंदा हो रहा है? लेकिन इनका ताल्लुक अल्लाह के साथ, इनका ताल्लुक नमाज के साथ, और इन्होंने नमाज को ऐसी बनाई है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं वस्तईनु बिस्सबर वस्सला, के नमाज और सबर के जरिए से अल्लाह की मदद को उतरवाओ। और इनके साथ ही चलने वाले जब पता चल गया कि इनकी सवारी का इंतकाल हो गया, तो कहने लगे भाई साहब तुम हमारे साथ आ जाओ और तुम अपना सामान दे दो। हमारे ये दो तीन चार गाड़ियां चलती है, और अगर कोई गाड़ी में पंचर हो जावे तो बोलो सबसे पहले क्या करेंगे, अरे बोलो क्या करेंगे? मैं हूंगा तो मैं तो मोबाइल निकालूंगा, आप लोग क्या करोगे? अरे बोलो ना यार, फौरन उसको इतना, अरे भाई गाड़ी में मेरा पंचर हो गया जरा रुकना, अरे बोलो कहेंगे कि नहीं? तो वो सवारी इनके साथ चलने वाले कहने लगे भाई नबाता तुम आ जाओ, हमारे साथ सवारी है और तुम अपना सामान दे दो, हमारी सवारी के अंदर ला देंगे। लेकिन इन्होंने नमाज को ऐसी बनाई थी, किसको बनाई थी बोलो, अल्लाह के साथ इतना ताल्लुक था कि जो कह देंगे अल्लाह हमारे मसले को हल कर देंगे। अब उन्होंने दो रकात पढ़ के अल्लाह से कहा, दो रकात पढ़ के किसको कहा बोलो, ये जो सलातुल हाजात है ना, ये इसके लिए अल्लाह ने वास्ता बनाया है, सहाबाई किराम अपनी तमाम जरूरतों को नमाज के जरिए से अल्लाह को कहते थे और अल्लाह पाक इनके मसले को हल कर दिया करता था। आज हमारे अंदर इतनी ताकत है, अरे बोलो, एक एक भूख दो रोटी की लगी ली है और कोई मसला नहीं है, कोई जगह खाना पीना नहीं मिलता, तो क्या दो रकात के जरिए से अपने रोटी का मसला हल करा सकते? बच्चों के रिश्ते का मसला अटक गया, अरे बोलो नमाज में इतनी ताकत है। उम्मे ऐमन रजी अल्लाह तआला अन्हा चली हिजरत की नीयत से, और दरमियान के अंदर रोजे की हालत है और शाम का वक्त हो गया, इफ्तारी का वक्त है और खाने पीने की कोई चीज नहीं। हम लोग तो 24 घंटे का सफर होता है तो बोलो कितनी चीजें लेके चलते, लेकिन वो अल्लाह के भरोसे पर चलते थे। इस दावत की मुबारक मेहनत के जरिए से अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी ताकत दी है कि अगर आदमी किसी बात को तय कर लेवे और अल्लाह ही पर भरोसा करे, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बु, जो आदमी अल्लाह पर भरोसा करेगा अल्लाह पाक उसके लिए क्या हो जाएंगे। लेकिन हमारा भरोसा किस पर है बोलो, जेब पर, दुकान पर, मुलाजिमत पर, बैंक बैलेंस पर, सोने और चांदी, अरे बोले है कि नहीं? लेकिन इनका भरोसा किस पर था? اب مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا اور افطاری کے لیے کوئی چیز نہیں. اللہ نے ہتھیار دیا ہے نماز, اللہ نے ہتھیار دیا ہے دعا. انہوں نے اللہ سے کہا, اے اللہ میں تیرے راستے میں چل رہی ہوں اور روزے کی حالت میں ہوں اور شام کا وقت ہو گیا اور افطاری کی ضرورت ہے, اے اللہ تو انتظام کر لے. ہماری تمہاری طریقے سے, ارے بھائی کھانا ختم ہو گیا ہے اور ہم جماعت میں چل رہے, جھڑک دو آدمی کا بھیج دو نے, دو آدمی کو لے کر تاکہ ہمارا کھانا پینے کا انتظام ہو جاوے. ہم فوراً گھر کہیں گے, دوستوں کو کہیں گے, ٹرینوں میں جا رہے, ارے بولو یہاں سے جماعت میں جا رہے, اور درمیان کے اندر کھانے کا وقت آ گیا, کس کو کہتے ہیں ایمانداری سے بولو, ارے بولو مخلوق کو کہتے ہیں, حالانکہ ہم نے خالق کو سمجھا ہی نہیں. اور اللہ پاک کا وعدہ یہ ہے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ, جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ پاک اس کے لیے بولو کافی ہو جائیں گے. تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کو کہنے لگی, اے اللہ شام کا وقت ہے, افطاری کا وقت ہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں, تو انتظام فرما. اور بولو اللہ پاک تو قادر مطلق ہے کہ نہیں, اللہ کو اسباب کی ضرورت ہے کہ کوئی آدمی لا کر کھانا دیوے, کوئی آدمی کھانا پکاوے تب کھانا ملے, ایسا ہے نہیں. اور کوئی بھی اسباب نہیں ہے, جنگل بیابان ہے, اکیلی عورت ہے, ہجرت کرنے کی نیت سے جا رہی ہے اور شام کا وقت ہو گیا اور اس کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے اور ایسی نماز اور دعا کی طاقت کو بنائی تھی کہ آسمان سے ایک ڈول اترا. حیات الصحابہ میں قصہ لکھا ہے, آسمان سے, اب کتنا لمبا آسمان, کتنا ہم کہیں گے یار اتنا اتنا اتنے اونچے آسمان سے اتنا لمبا رسا اللہ کے پاس کہاں سے آیا, ارے بولے تو بے وقوفی ہے. اب اوپر سے اللہ نے ڈول کو اتارا جس میں ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہے. ام ایمن کہتی ہے کہ میں نے اس پانی کو استعمال کیا, ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی تھا اس دن سے اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا, اور ڈائریکٹ اللہ کے تعلقات اور نماز اور دعا کی برکت سے اللہ نے جو ان کی مدد کی, کہنے لگی کہ میں نے پانی کو استعمال کر دیا, اس کے بعد سخت گرمی کے دنوں میں میں روزہ رکھتی ہوں لیکن پوری زندگی کی پیاس کو اللہ نے ختم کر دیا. ہاں اب میں پانی پیتی ہوں فرحت کے لیے اور ٹھنڈک کو حاصل کرنے کے لیے, ورنہ زندگی کی پیاس کو اللہ پاک نے اس ایک دن کی قربانی کی برکت سے ختم کر دی. جو آدمی اللہ کے ساتھ تعلق کرتا ہے پھر اللہ پاک اس کا نظام, حدیث کے اندر آتا ہے, حدیث کے اندر آتا ہے, اے ابن آدم تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے, میں تیرے سینے کو تفکرات سے خالی کر دوں گا اور تیرے کاموں کو مجتمع کر دوں گا, اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو میں تیرے کاموں میں تیرے کو الجھا دوں گا. ارے بولو میں اور آپ الجھے ہوئے ہیں کہ نہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, جو میرے احکامات کو توڑے گا, جو پیارے نبی کے طریقے کو چھوڑے گا, جو قرآن کے خلاف کی زندگی کو گزارے گا, اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ایسے انسانوں کی زندگیوں کو تنگ کر دیں گے. ارے بولو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی زندگیاں تنگ ہے کہ نہیں. ہمارا ایک ساتھی کہنے لگا, مولانا میں تم کو کیا سناؤں, کروڑوں پتی ابج پتی, ہم لوگ گئے تھے زمبابوے کے اندر تو ملاقات پہلے تو نہیں دیوے, بہت مشکل سے 10 منٹ کی اجازت ملی, ہم گئے اور 10 منٹ تھوڑی سے بات کی, اس نے کہا بھائی بیٹھو. ارے بھائی تم تو بہت مشغول آدمی ہو, تمہارے پاس تو کہاں وقت ہے, بولے نہیں نہیں بیٹھو. آدھا گھنٹہ, ایک گھنٹہ, ڈیڑھ گھنٹہ, پھر میرے کو کہنے لگا, حالانکہ سب سے بڑی اونچی گاڑی کا وہ شو روم تھا اس کا, میرے کو یاد نہیں رہا کون سی ٹوئٹو یا کون سی, اتنا بڑا پورے علاقے کے اندر شو روم اکیلے کا تھا اور روزانہ کتنی گاڑیوں کی ڈیلیوری دیتا تھا. لیکن اس نے کہا مولانا اتنی پریشانیاں ہیں کہ اگر تم کو ہم کہیں گے تو پوری رات گزر جائے گی, ہماری پریشانیاں اور دکھ ختم نہیں ہوں گے. کیا بات ہو گئی, سب کچھ موجود ہے, مال موجود ہے, عزت ہے, دنیا کے اعتبار سے مالدار کہلاتے ہیں, لیکن اللہ پاک کا قانون یہ ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, جو میرے احکامات کو توڑے گا, جو میرے نبی کے طریقے کو چھوڑے گا, جو قرآن کے خلاف کی زندگی کو گزارے گا, اللہ پاک کہتے ہیں ایسے انسانوں کی زندگیوں کو ہم تنگ کر دیں گے. ہمارے ایک ساتھی کہنے لگا, مولانا آپ ذرا دیکھو چلو پھرو اور لوگوں کو پوچھو تو صحیح, ये तो तमाचा माल कर अपने गाल को लाल रखते हैं, वरना इनके अंदर उनकी परेशानियां इतनी है, जाहिर में नजर आता है बंगला है, गाड़ी है, ये है, वो है, लेकिन अंदरून से परेशान है। क्या बात हो गई? इसलिए कि ये तो अल्लाह पाक की तरफ से तयशुदा है, मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन अव उन्सा, जो आदमी ईमान और अमल सालिहा के साथ जिंदगी को गुजारेगा, अल्लाह पाक का वादा है, फलनुहयन्नु हयातन तय्यबा, हम उनकी जिंदगियों को खुशगवार बनाएंगे। हमारी जिंदगियां जो परेशानी में है, हम टेंशन, प्रॉब्लम, मसाइल, मुश्किलात, बेबरकती के अंदर है, वो अपने हाथों से, इसलिए कि मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, भाई इस जेब में हमने मिसवाक रखा, सीधे जेब के अंदर मिसवाक रखा, और उल्टे जेब में मैं तलाश करूंगा, अरे बोलो कयामत तक मिलेगा? अरे बोलो नहीं, वो तो सीधे जेब में रखा है। तो भी जिक्र के अंदर अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल कुलूब, दिलों का चैन सुकून अल्लाह ने अल्लाह के जिक्र में रखा है, और हम दुकानों में, मार्केटों में, माल में, डॉलर में, सोने में, चांदी में अगर हम तलाश करेंगे बोलो मिलेगा? अरे भाई मिसवाक तो सीधे जेब में रखा है और उल्टे जेब में तलाश करते। तो नबात इब्ने यजीद जो ताबी है वो कहने लगे, भाई साहब तुम आगे बढ़ जाओ, हमको अल्लाह ने नमाज दी है, हमको अल्लाह ने कलमा दिया है, हमको अल्लाह ने अल्लाह का ताल्लुक दिया है, हमको अल्लाह ने कुरान दिया है, क्या दिया है बोलो, इससे बढ़कर दुनिया में क्या नेमत हो सकती है? अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर कहते हैं, या यूहन्नास कद जातकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम वशिफाउ लिमा। हमारे यहाँ भी एक साथी है, हमने उसके जरिए से पाइप मंगवाए, एक साथी कहने लगा, मौलाना रोजाना सुबह में 100 आदमी को जगाता है। कितने आदमी को? 100 आदमी फजर की नमाज के अंदर फोन करके, भाई साहब अब्दुल्ला भाई, अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद, ये फिर वो कहवे के भाई हमारी आदत पड़ गई, हम ऐलानम रखते हैं, हमारे पास वो मोबाइल है, तो फिर वो 10-15 आदमी जिन्होंने मना किया उसका नाम निकाल दिया, फिर दूसरे ऐड किए। मैंने कहा ये अमल कितने साल से करता है? बोले 22 साल से करता हूँ। अल्लाह पाक ने एक मौका दिया है अल्लाह पाक की तरफ से, इसलिए दोस्तों बुजुर्गों कि आदमी अपनी आखिरत को कमावे, अद्दुनिया मज़रअतुल लिल आखिरह, के दुनिया की जिंदगी आखिरत के लिए खेती। तो वो ताबी अल्लाह के सामने नमाज पढ़ के क्या कहने लगे, ऐ अल्लाह मैं तो तेरे रास्ते में हूँ, हमको तो अल्लाह के साथ बातें करने भी नहीं आ रही और अल्लाह के सामने मांगना भी नहीं आ रहा है, वरना लोगों ने कैसा मांगा है कि मरी हुई सवारी को जिंदा करा दिया, चक्की खुद ब खुद चलने लगी और बगैर गेहूं के आटा निकलने लगा, सब मर्सिबल पंप खुदाए बगैर अल्लाह पाक ने पानी का निजाम चलाया और उनके पूरे बाग के अंदर अल्लाह ने पानी का निजाम चलाया। तो वो क्या ताबी कहने लगे, ऐ अल्लाह मैं तो तेरे रास्ते में हूं और मैं सवारी का मोहताज हूं, भाई इसको भी छोड़ दो, सब तुम्हारी तरफ देख रहे, छोड़ दो, अल्लाह मैं तो इस सवारी का मोहताज हूं और मैं तेरे रास्ते में हूं, अल्लाह इस सवारी को तो कयामत के दिन जिंदा करेगा। देखो अल्लाह से कहने का अंदाज, अल्लाह इस सवारी को तू कयामत के दिन जिंदा करे, आज भी तू कादिर मुतलक है और मैं मोहताज हूं और मेरे को जरूरत है और तू कादिर मुतलक है, अल्लाह तू मेरी सवारी को जिंदा कर दे। मैं और आप कह सकते हैं? अरे बोलो, है इतना अल्लाह के साथ ताल्लुक, लेकिन वो क्या कहना, मरी हुई चीज को सारी दुनिया मिलकर यूं कहेगी कि मरी हुई चीज कभी जिंदा नहीं हो सकती है, लेकिन उनका यकीन अल्लाह के साथ है, इनका ताल्लुक अल्लाह के साथ है, तो क्या कहने लगे, ऐ अल्लाह मैं तेरे रास्ते में हूं और तू कादिर है और मेरी सवारी मर चुकी है और तू उसको कयामत के दिन जिंदा करेगा, आज जिंदा कर दे। नामुमकिन चीज को मुमकिन की तो हमारे तो बोलने की भी ताकत नहीं, लेकिन उन्होंने अल्लाह के सामने दुआ मांग करके करके बतलाया। कहते हैं कि अपनी छड़ी को ली और मरी हुई सवारी को जैसे जिंदा सोई हुई सवारी को मारते हैं, ऐसे थोड़ा सा ठोंसा दिया, वो पैदा होकर खड़ी हो गई, लेकिन यकीन था, किस पर भरोसा किया बोलो, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह। जो आदमी ये सीखने की जरूरत है, यही जिंदगी है। हमारे फजल करीम रहमतुल्लाह अलैह को हम सब जानते हैं कि नहीं? अरे बोलो कौन कौन जानता है और किसने किसने देखा है इनको? मौलाना असगर साहब नंदासन वाले और फजले करीम रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों का तय हुआ कि आपको बंबई के इज्तिमा में जाना है। तो मौलाना असगर साहब नंदासन से आए और फजले करीम मलिक अहमद में जब दोनों की मुलाकात हुई तो कई साहब ने फैसला किया कि आपको बंबई जाना है इज्तिमा में। मौलाना असगर साहब कहने लगे मेरे जेब में तो कुछ भी नहीं है। तो फजले करीम ने कहा मेरे पास भी कुछ भी नहीं, अब बोलो बगैर पैसे के, लेकिन भरोसा किस पर था बोलो। इस दावत की मुबारक मेहनत के जरिए से अपना ईमान और अपना यकीन ऐसा बनाया था कि भाई अल्लाह बगैर अल्लाह के यहाँ कोई सबब की जरूरत है। अरे बोलो, मूसा अली सलातो वस्सलाम को 40 साल बनी इसराइल के साथ वादिय तीह में मन्नो सलवा बगैर असबाब बगैर दुकान बगैर पकाए बगैर ये तुम्हारे कूक के बोलो किसने खिलाया, पर एक दो आदमी थे। ईसा अली सलातो वस्सलाम के लिए दस्तरखान किसने उतरवाया, अल्लाह की तरफ से। अरे अबू मुस्लिम खौलानी एक मर्तबा हज के लिए जा रहे थे, तो आदमी को होता है ना कि भाई अल्लाह वालों के साथ हम भी हज में जावे। अरे बोलो ने, कोई जानने वाला कोई पुराना कोई हाजियों में काम करने वाला कोई आलिम, हर आदमी की तमन्ना होती है। तो लोगों को पता चल गया अबू मुस्लिम खौलानी हज के लिए जा रहे, तो 3000 का मजमा जमा हो गया। कितना? 3000। अबू मुस्लिम ने सबको जमा किया और जमा करके क्या कहने लगे, देखो भाई दो शर्तें हैं, हज में जाना है ना और किसके घर जाना है। अरे बोलो ने, अल्लाह के घर जाना है। एक तो पहली शर्त यह है कि भाई दुनिया की कोई चीज लेकर नहीं जाना। होगा जब उसने मेहनत की है। तो पहली शर्त तो यह है कि बोलो दुनिया की कोई चीज लेकर नहीं। और दूसरा इन्होंने यूं कहा कि किसी मखलूक से सवाल नहीं करेंगे। इन दो शर्तों के साथ जो मेरे साथ आना चाहे वो मेरे साथ आवे, वरना अपने तौर पर चला जावे। 3000 का मजमा है, 2700 आदमी मेरे से कमजोर ईमान वाले छट गए और कितने बाकी रहे। अरे बोलो कितने बाकी रहे, 300। अब ये चले, पैदल चलते थे, सवारी पर चलते थे, कोई हमारी ऐसी फ्लाइट टूटी नहीं कि चलो साढ़े, हम भी कहेंगे अरे भाई चलो कोई से नहीं मांगेंगे तो 4.5 घंटे में तो न मांगना आसान है, लेकिन 4.5 महीने का सफर होवे। अब वो चले सवारी पर, पहला पड़ाव डाला। अब सुबह से चले थे, वो 11-12 बजे पड़ाव डाला और हजरत तो नमाज की नियत बांध करके खड़े हो गए और नमाज पढ़ के जल्दी से सो गए। साथी एक दूसरे को देखने लगे कि 12-1 बज जाते हैं तो बोलो पेट से भी आवाज आती है। आती है आप लोगों की? आती है? क्या आती है पेट से? क्या आवाज आती है? भूख लगी है क्या? बोलो तो अंदर से आवाज आने लगी। तो कोई एक आदमी हिम्मत वाला होगा, याकूब भाई जैसा, उसने कहा कि हजरत आप तुम लेकर तो आए हो और दो शर्तें लगाई है, एक तो दुनिया की कोई चीज लेकर नहीं चलना तो हम तो हमारा तमाम तोशा छोड़ दिया, और दूसरा कोई से सवाल भी नहीं करना तो मांगे भी किससे, लेकिन आप लेकर आए। तो इनका ताल्लुक किसके साथ था बोलो? उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अल्लाह पाक ने निजाम चलाया और खाना गरम गरम खाना और रोटियां और तरकारी और जो भी सालन आया, अब उन्होंने खाना शुरू कर दिया, जाओ खा लो। लेकिन खाने के बाद कुछ रोटियां बच गई तो एक आदमी ने सोचा कि यार चलो इसको भी शाम के लिए अपने रख दो। अरे होता है ना, अरे बोलो ना, हम मदरसे में पढ़ते थे तो रात लंबी रात होवे तो अपने क्या कहे भाई, ये तो अपना है ना माल खाना, तो चलो एक दो रोटी लेके चले जाओ। उन्होंने देखा कि भाई एक आदमी, तो फौरन अबू मुस्लिम खौलानी कहा कि नहीं, जो अल्लाह अभी खिलाएगा वो अल्लाह बोलो, अरे बोलो शाम को भी खिलाएगा। लेकिन भरोसा किस पर था? वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, भरोसा अल्लाह पर होना चाहिए। आज हमारा यकीन बोलो, हाँ अल्लाह तो करते हैं मगर दुकान के बगैर। मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया और यूं क्या क्या मौलाना, तुम जब देखो तब तश्कील करते हो, 4 महीने भेजते हो, हिदायत तो मुकद्दर में होगी तो, और हिदायत तो अल्लाह देंगे, और मुकद्दर में हिदायत होगी तो अल्लाह पाक देंगे, तो मौलाना उमर साहब तो हकीम थे, बोले हाँ यार तेरी बात तो बराबर है, मुकद्दर में हिदायत होगी तो अल्लाह पाक दे देंगे। बोले तू मार्केट है ना सामने निजामुद्दीन के सामने जो मार्केट था, बोले जाकर ऐलान कर दे कि सब भाई लोग अपनी दुकानों को बंद करके घर चले जाओ, तुम्हारी मुकद्दर की रोजी होगी तो अल्लाह बोलो। वो आदमी कहने लगा मौलाना ये कैसे हो सकता है, अरे भाई दुकान तो खोलनी पड़ेगी। मौलाना कहा कि मुकद्दर की हिदायत तो अल्लाह देंगे, मेहनत तो बोलो। अरे बोलो कौन नियत करता है मैं भी मेहनत करूंगा, अरे बोलो ना यार। हाँ तो दुनिया तो मेहनत की जगह है। तो फजले करीम रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा जब मौलाना असगर साहब ने कहा कि भाई मेरे पास, तो बोले मेरे पास भी कुछ भी नहीं, लेकिन मलिक अहमद की मस्जिद से रेलवे स्टेशन जाने में पैदल जाने में कोई पैसे लगते? अरे बोलो ने, वाहन का तो टैक्स है लेकिन पैदल चलने का टैक्स है? अरे बोलो, कहीं भी नहीं है। है वकील साहब, हाँ वाहन का टैक्स है, तुम स्कूटर लाओगे या फोर व्हील लाओगे तो उसका तो टैक्स भरना पड़ेगा रोड पर चलाने के लिए, लेकिन आदमी चल के जावे। अब वहां गए स्टेशन पहुंचकर मौलाना असगर साहब ने कहा कि चलो, लोग हमको बेवकूफ कहेंगे, जेब में पैसे नहीं है और बंबई की टिकट की लाइन में खड़े हो गए, लेकिन यकीन किस पर था बोलो? तो मौलाना फजले करीम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा भाई लाइन में खड़े रहने के कहाँ पैसे लगते लगते, ये कौन से भावनगर में लगते भाई, रेलवे स्टेशन में लाइन में खड़े रहने के पैसे हमारे वहाँ भी नहीं लगते, अहमदाबाद में भी नहीं लगते। अब ये दोनों खड़े हो गए, अब चलते 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 एक आदमी के बाद इनका नंबर आने वाला था टिकट लेने का। फिर मौलाना असगर साहब ने कहा अरे भाई फजल भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं, चलो निकल जाओ बाहर वरना लोग हमको बेवकूफ़ कहेंगे कि इनको, हमारे वहाँ अगर कोई ऐसी हरकत करे पागलपने की, ये तो पागलपना नहीं है लेकिन हमारी निगाहों में तो भाई बगैर पैसे के तो हमारे वहाँ क्या कहते रहे, इसको मरोली ले जाओ मरोली। मालूम है मरोली क्या था? मेंटल हॉस्पिटल थी पहले, अभी तो बंद हो गई। तो ऐसा कोई आवाज़ ऐसा कोई हरकत कर रहे तो क्या कहे उसको, इसको मरोली ले जाओ, इसका माना समझ जाओ। तो मौलाना असगर साहब ने कहा कि लोग हमको बेवकूफ कहेंगे कि जेब में तो पैसे नहीं है और ये लाइन में खड़े हो गए, लेकिन इनका यकीन अल्लाह पर था। क्या कहने लगे, एक आदमी की बकदर चलने में तो पैसे नहीं लगते। बस वही आदमी का यकीन जब अल्लाह पर होता है तो फिर अल्लाह पाक का निजाम चलेगा। वो अगला आदमी उसने देखा कि दो बुजुर्ग है अल्लाह वाले हैं और पता कर लिया होगा कि दोनों बंबई जा रहे हैं, तो उसने बजाय एक के तीन टिकट ली। मालूम है पहले वो पुट्ठे की टिकट आती थी, यूं डाली खट करके आई फिर दूसरी, अब उसने तीन टिकट लेकर फजले करीम की तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगा हजरत ये मेरी तरफ से दो टिकट तुम, अरे भाई हम भी तो लाइन में खड़े। अरे नहीं नहीं मेरी तरफ से ले लो ना भाई, हम भी तो लाइन में। अरे भाई ले लो ना यार, हजरत ने ले लिया। अरे बोलो ये काम किसने निकाला? अरे बोलो, लेकिन कब? जब आदमी किस पर भरोसा करे? अल्लाह पर भरोसा करे। अगर आदमी चीजों के साथ, हाँ अल्लाह को भी मानते हैं मगर, रोजी तो अल्लाह देंगे मगर, शिफा तो अल्लाह देंगे मगर, क्या मगर? डॉक्टर के पास जाना भाई सुन्नत एक अलग चीज है, लेकिन यकीन किस पर आना चाहिए? हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माओ जमजम लिमा शुरीबला, जो आदमी जमजम पिएगा अल्लाह पाक उसकी प्यास को दूर करेंगे, भूख को मिटाएंगे, और अगर बीमार होगा तो अल्लाह उसकी बीमारी को बोलो। अब जमजम की बरकत से, लेकिन कब? जबकि आदमी को यकीन भी हो। क्या हो बोलो? आज हमको अल्लाह पर ही यकीन नहीं, हमको हमारे नमाज पर यकीन नहीं, हमको हमारी दुआ पर यकीन नहीं। अरे जो आदमी अल्लाह पर भरोसा न करे, और आदमी इसलिए बाज़े मर्तबा नमाज पढ़ने के बावजूद भी और किसी सुन्नत के मुताबिक मसनून दुआ के मांगने के बावजूद भी बोलो, वो जो वादे हैं वो वादे हमारे साथ पूरे नहीं होते। जैसे जमजम मैं और आप कितने साल से पीते हैं बोलो, लेकिन हमारी पैरों की तकलीफ दूर हो रही? अब हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कभी भी गलत नहीं हो सकती। जो जिस नियत से जमजम पिएगा अल्लाह उसकी नियत को पूरी करेगा। हमारा एक साथी इंग्लैंड में था, वो कहने लगा कि मेरा एक दोस्त बीमार हो गया और कैंसर की बीमारी लग गई, और बोलो सारी दुनिया में कैंसर का इलाज है? ساری دنیا عزیز ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس نیت سے زمزم پیے گا اللہ اس کی نیت کو پوری کرے گا. ڈاکٹر نے کہا جاؤ اپنا بایوپسی کراؤ، خون کا ٹیسٹ کراؤ، یہ کراؤ وہ کراؤ، پوری فائل تیار کر کے جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے پورا اس کے حالات دیکھ کر اس کو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اس کے دوست کو بلا کر یوں کہا کہ تمہارا یہ بھائی ہے نا وہ کینسر کا مریض ہے اور 6 مہینے زندہ رہے گا. ڈاکٹر کیا کہیں گے؟ 48 گھنٹے اگر اچھا ہو گیا تو یہ کراس ہو جائے گا اور 72 گھنٹے تک اس کو خطر ہے. پتہ نہیں ڈاکٹر کیا کیا کہتے. اس کو یوں کہا کہ تو 6 مہینے کا مہمان ہے. باہر نکل کر اس بیمار نے اپنے دوست کو پوچھا بتلا ڈاکٹر نے کیا کہا. بولے ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اس کو کینسر ہے اور یہ 6 مہینے زندہ رہے گا. اس نے کہا چل ہمارے نبی کا حکم ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے جو زمزم جس نیت سے پیے گا اللہ اس کی نیت کو پوری کرے گا. اب رمضان میں دونوں گئے عمرہ کرنے اور سحری میں اور افطاری میں خوب زمزم پیا اور پورے یقین کے ساتھ پیا کہ ہمارے نبی کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. اب وہ تو پورا مہینہ ہے اور اس نے دوبارہ پوری فائل تیار کی، بایوپسی کروایا اور یہ رپورٹ نے خون کا نہیں یہ بلڈ کا نہیں پورا، اور پوری فائل تیار کرنے کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کر کہا ڈاکٹر صاحب بتلا دو اس میں کیا بیماری. ڈاکٹر کبھی فائل کو دیکھتا کبھی اس کے چہرے کو دیکھتا، اس لیے کہ 2-4 مہینے پہلے ہی تو گیا تھا اور ڈاکٹر کو اتنا تو یاد رہے گا نا کہ یہ مریض آ کر آیا تھا اور یہ کینسر کا مریض تھا اور میں نے اس کو کہا تھا تو 6 مہینے میں چلے جائے گا. پھر تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر سے برداشت نہیں ہوا تو ڈاکٹر نے فوراً کہہ دیا ارے بتلا دے دنیا کی کون سی بڑی ہاسپٹل میں علاج کرا کے لایا کہ پہلے کی فائل میں تو کینسر ہے اور آج کی فائل بولو نیل بتلاتی. اس نے کہا کہ ڈاکٹر میں کسی دنیا کی بڑی ہاسپٹل میں نہیں گیا بلکہ میرے نبی کے فرمان پر یقین کرتے ہوئے میں نے زمزم کو استعمال کیا اور ہمارے نبی نے فرمایا جس نیت سے پئیں گے اللہ اس کی نیت کو پوری کر دے گا، تو میں نے بیماری کی دور کرنے کی نیت سے پیا ہے، اللہ پاک نے میری بیماری کو دور کر دیا. اب ڈاکٹر صاحب یوں کہہ رہے کہ تم حاجی لوگ تو 5-25 لیٹر پانی زمزم کا لے کر آتے ہو، ایک آدھا لیٹر میرے کو بھی دو اور میں چھوٹی چھوٹی بوٹل بھر کر رکھوں گا، میرے یہاں کچھ سر کے مریض کچھ پیٹ کے تکلیف والے آتے ہیں تو میں ان کو بھی دوں گا، تم کو تو کینسر کی بیماری اچھی ہو گئی اور میں کسی کا سر کسی کا پیر کسی کا گھٹنا میں چھوٹی چھوٹی بوٹلیں بھر کے دوں گا. اگر اس حاجی صاحب نے 1-2 لیٹر پانی زمزم ان کو دیا اور وہ ڈاکٹر چھوٹی چھوٹی شیشی بوٹلیں بھر کر کوئی بیمار آوے اور میرے پیٹ میں بہت درد ہے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا لو یہ زمزم پی لو کیا اچھا ہو جائے گا؟ ارے بولو بھائی کیوں اچھا نہیں ہوگا، اس کو تو کینسر کی بیماری اچھی ہو گئی. ہیں یقین کی کمزوری، میں اور آپ پیتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو نے، لیکن ہمارا یقین نہیں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں اس دعا کو پڑھ لے، تیرا قرضہ اوہد کے پہاڑ کے برابر بھی ہوگا، اللہ پاک تیرے قرضے کو دور کر دیں گے. آدمی قرض دار پڑتا بھی ہے لیکن یقین کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا قرضہ ادا نہیں ہوتا. یہ دعوت کی مبارک محنت دوستو بزرگو اس یقین کی مایا کو بنانے کی محنت ہے، اور جب بن گیا تو پھر بولو اس کے سب مسئلے اللہ پاک، من کان للہ کان اللہ لہ، جو آدمی اللہ کا بن جائے گا پھر اللہ پاک اس کے ہو جائیں گے، پھر اس کو ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں. کتنی ہی بڑی اور کتنا ہی بڑا مسئلہ ہوگا وہ تو اوپر ہی کہے گا اور اللہ پاک اس کے مسئلے کو، اور کتنے ہی بڑا بھاجے اللہ والے دنیا میں آپ دیکھو تو روزانہ کتنا آدمی کو کھلاتے ہیں. آپ نے کبھی اپنے بات یہاں سے شروع ہی نہیں کہ قارون تو بہت بڑا مالدار، لیکن آج تک کسی نے ان کے اپنے بیٹوں کا نام قارون نہیں رکھا، لیکن نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، نظام الدین کتنے نام ہیں، معین الدین کتنے نام ہیں، کیا بات ہو گئی، لوگ ان کے ساتھ تعلق کرتے ہیں. اور یوں فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا دسترخوان ان کا چلتا تھا کہ روزانہ 18 من نمک استعمال ہوتا تھا. کتنا بولو؟ اور پہلے 1 من 20 کلو کا نہیں ہوتا تھا، پہلے کتنے کلو کا ہوتا تھا؟ 40 کلو کا. तो कितना इस्तेमाल होता था, और तुम्हारे मेरे वहां एक किलो कितने दिन चलता है? मेरे यहाँ तो 500 ग्राम एक किलो एक महीना चलता है, आपके वहां? और रोजाना 18 मन, तो क्या इनका बहुत बड़ी दुकान थी? अरे बोलो, हमारे मौलाना सईद अमर खान साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, दुकान से, मुलाजिमत से, फैक्ट्री से, खेत से, मजदूरी से, विरसे से, हदीये से, ये तो हमने लेना सीखा है, लेकिन डायरेक्ट अल्लाह से लेना? अरे बोलो। एक मरतबा एक कहीं सफर कर रहे थे और एक कोई मुरीद आकर कहने लगा, हजरत तुम्हारा लिबास दे दो ना बरकत एक जोड़ा। तो अपने खादिम को कहा, भाई कितने जोड़े कपड़े हैं? बोले 5। बोले सब दे दो। हजरत हम तो सफर कर रहे हैं, अफ्रीका का सफर चल रहा है। बोले बखील मत बन, बहुत मुश्किल से दरवाजा खुलवाया है, बहुत मुश्किल से। हाँ, हदीस के अंदर आता है, खर्च कर तुझ पर खर्च किया जाएगा, और अर्श वाले से कमी का खौफ ना कर। अब उन्होंने तो 5 जोड़े दे दिए, अब इनके पास क्या रहा? अरे बोलो, कुछ भी नहीं, वो जोड़ा जो पहना हुआ था वही। लेकिन अल्लाह पाक का वादा है, वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुवा युखलिफु, जो आदमी अल्लाह के नाम पर लगाएगा अल्लाह पाक उसका बदल दे देंगे। हमने लाखों करोड़ों रुपये दुकानों में, फर्नीचरों में और शोरूम में और दुनिया की चीज़ों में लगाए, लेकिन उससे इतना बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन जो आदमी अल्लाह के नाम पर लगावे, तो इन्होंने तो 5 जोड़े दे दिए। आइंदा चलते चलते चाइना तक जाना था, एयरपोर्ट पर पहुंचे तो एक आदमी 6 जोड़े लेकर आया और आकर यूं कहा कि हजरत मैंने आपके लिए, हालांकि चाइना बहुत कम वहां पाकिस्तानी रहते हैं। तो हजरत ने कहा, अपने खादिम को देखा, जो आदमी अल्लाह के नाम पर लगाता है, फिर तहकीक की कि भाई ये कैसे हुआ, तो यूं कहा कि एक पाकिस्तानी रायवन पहुंचा था और उसने हजरत को कहा था कि मेरे कपड़े की दुकान है, मैं सिलाई का काम भी करता हूं, आप अपना नाप दे दो ताकि मैं आपको एक जोड़ा सिला के दे दूं। बोले मेरे को जरूरत नहीं, मेरे पास तो बहुत। लेकिन उसने 2 नंबर के अंदर पूरी अपने हजरत के कपड़े लेकर नाप ले लिया और उसने ये तय करके रखा था कि जिस दिन हजरत चाइना आएंगे मैं कपड़े सिला कर इनको दे दूंगा। अब पता चल गया कि मौलाना सईद अमर खान साहब रहमतुल्लाह अलैह आ रहे हैं, तो ये पूरा निज़ाम अल्लाह पाक की तरफ से चला और इनका यकीन ये बना कि भाई वमा अनफक्तुम मिन शैइन, यहाँ अल्लाह के नाम पर दिया वहाँ अल्लाह पाक ने। किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, किसी को टेलीफोन करने की ज़रूरत नहीं, व्हाट्सअप करने की ज़रूरत नहीं। हमारी जमात यहाँ से गुजरती है, 10 आदमी का खाना लेकर आ जाना, बल्कि भरोसा किस पर है? वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु। और एक सुना दूँ आखिरी, फल करीम रहमतुल्लाह अलैहि मदीना मुनव्वरा पहुँचे और मदीना मुनव्वरा में इज्तिमा था, क्या था बोलो? मौलाना सईद अमर खान साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने पूरी जिम्मेदारी सबको तकसीम की, तो खाने पीने और खिलाने की जिम्मेदारी फजले करीम के जिम्मे, और यूं कहा कि ये तो मदीनतुर रसूल है, अल्लाह के नबी का शहर है, देखो यहाँ टिकट मत लेना, यहाँ टिकट, और किसी से मांगना भी मत। अब बोलो उसके अलावा तीसरा कोई रास्ता है? लेकिन वो भी तो अल्लाह वाले थे, अपने आप को बनाया था। अब वो तो पूरा निज़ाम किया और मार्केट गए और 500 आदमी का खाना, 2 तेल, इतने 50 किलो गेहूँ, इतने चावल, इतना ये सब लेकर बोले वहाँ आ जाओ तुमको पैसे दे देंगे, हालांकि जेब बोलो खाली है। और ये तमाम खरीद करके मस्जिद नबवी में गए, हमारे छोटा भाई ने मेरे को सुनाया, इंतकाल हो गया, और मस्जिद नबवी में जाकर यूँ कहा, ऐ अल्लाह के नबी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे जिम्मे आई है, जब आपके यहाँ कोई मेहमान आता था तो बिलाल को आप सुपुर्द कर देते थे, बिलाल इंतजाम करता था, आज बिलाल की जगह पर फजल की जिम्मेदारी है, ऐ अल्लाह तू ही इंतजाम कर दे। अब क्या ताल्लुक, क्या दुआ, क्या अल्लाह के सामने। अब वो गए और वो लोग आए जो माल सामान डालने वाले, और उनको बुलाकर यूं कहा, भाई साहब कितना बिल हुआ? बोले क्या मजाक करते हो, तुम तो हमको पे करके आए, वहीं तो पैसे दे दिए थे, हालांकि इन्होंने नहीं दिए बल्कि इनकी शक्ल में फरिश्ते ने जाकर अदा कर दिया, लेकिन यकीन किस पर था बोलो? अरे बोलो, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु। ये दावत की मुबारक मेहनत के जरिए से अल्लाह पाक ने एक मौका दिया है, और इसी जिंदगी में अल्लाह ने यह बनाने को कहा है। हाँ, मरने के बाद थोड़ा कोई आदमी अल्लाह पर भरोसा करेगा तो अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएंगे। وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, जो आदमी अल्लाह के साथ डर कर जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह पाक के दो वादे, एक तो ये है हम तुमको रास्ता बना देंगे, चारों तरफ से बंद है लेकिन निकलने का रास्ता कौन करेगा, और दूसरा وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ऐसी जगह से अल्लाह रोजी देंगे जो आदमी का वहमो गुमान नहीं। हम लोग वेस्ट इंडीज के अंदर गए तो एक आदमी आकर कहने लगा, मौलाना तुमने समंदर, पानी का समंदर देखा? मैंने कहा हाँ देखा। उसके पानी के अलावा किसी और चीज का समंदर तुमने देखा? मैंने कहा वो तो जन्नत में जाकर देखेंगे, फिहा नहारुम मिन माइन गैर आसिन व नहारुम मिन लबन लम यतगय्यर, के भाई पाकीजा शराब, वो ठंडा मीठा पानी और दूध, और ये तो शहद। बोले यहाँ दुनिया में देखा? मैंने कहा नहीं देखा। बोले चलो मैं तुमको देखाऊं, पानी के अलावा का समंदर तुम लोगों ने देखा? अरे बोलो बाजू ने तो पानी का समंदर भी नहीं देखा होगा। हमारे एक रिश्तेदार थे, बहुत दूर रहते थे। मैंने कहा हाजी साहब स्टेशन पे चलो। बोले स्टेशन क्या होता है? हमारे दादा सुना रहे थे कि इनके कोई रिश्तेदार ने पूरी जिंदगी अपने गांव में पूरी जिंदगी गुजार दी, रेलवे स्टेशन तक नहीं देखा। ऐसे दुनिया में लोग होते हैं। तो बोलो पानी के अलावा किसी ने समंदर देखा? अरे बोलो। मैंने भी ना कहा कि हम नहीं। बोले चलो तुमको दिखाऊं। अब वो ले गया, 44 किलोमीटर का पूरा एरिया है, और मेरे को कहने लगा ये पूरा डामर का समंदर है जिससे रोड बनते हैं ना भाई। मैंने कहा ये सब कच्चे मकाना थे और लकड़ी के। बोले इसके लिए कि हर गर्मी के अंदर डामर पिघलता है, तो ये लकड़ियों का होता है तो नुकसान नहीं करता, अगर हम पक्का बनावे तो बोलो जमीन ढस जावे तो हमारा पाया हट जावे। और बोले 200 साल से यहाँ से डामर निकलकर दुनिया के मुल्कों में जाता है, और पूरा 44 किलोमीटर का पूरा एरिया डामर ही डामर है, और अभी लोग यूँ कहते हैं 1000 साल तक भी रोजाना उसको निकालते रहोगे इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होगा। तो भाई ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह चाहे तो दुकान के जरिए से रोजी देवे, और अल्लाह चाहे तो बोलो डायरेक्ट अल्लाह का निज़ाम है। इसलिए ये दावत की मुबारक मेहनत के जरिए से अल्लाह पाक ने दोस्तों बुजुर्ग को एक मौका दिया है, और इसी जिंदगी में करने का पूरी जन्नत की नेमत अल्लाह पाक ने बयान करके फरमाया जज़ाअम बिमा कानू यअमलून, ये बदला है उन लोगों का जो दुनिया में अमल करके लाए। बातें सुनकर और इंशाल्लाह माशाल्लाह कहकर नहीं, बल्कि क्या करके आए बोलो? अमल करके। अरे 5 रुपए का नमक भी बगैर मेहनत के नहीं मिलेगा, मिलेगा? एक आदमी मेहनत ना करे, जेब में कुछ भी नहीं हो और जाके खड़े हो जाओ भाई 1-10 रुपए का, भाई पैसा लाओ, बगैर पैसे के नहीं आएगा। तो इतनी बड़ी जन्नत बगैर मेहनत के मिलेगी? तो नियत करो इंशाल्लाह हम सब भी मेहनत करेंगे। अरे करोगे इंशाल्लाह? क्या दुकान पर मेहनत करेंगे? वो तो करते ही है। अरे बोलो नियत करो इंशाल्लाह दावत की मेहनत को जिंदगी का मकसद बनाएंगे। अरे करेंगे इंशाल्लाह, और उसके लिए 4-4 महीने। इसके लिए क्या है बोलो? मौलाना उमर साहब फरमाया करते थे अली बात आसा 4 महीने। हमारी दावत की मेहनत की ABCD क्या है बोलो? तो नियत करो इंशाल्लाह हम सब भी 4-4 महीने लगाएंगे। कौन कौन लगाएगा? लग हाथ तो पूरा उठाओ और खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अल्लाह पाक अपनी मोहताजगी देखना चाहता है कि मेरे बंदे मेरे दीन की मेहनत करने के लिए कितने तैयार हैं।